الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة بقرة کی 37 نمبر آیت. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ آیات پڑھی تھی اور اس کے متعلق ذکر کیا تھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے متقین کے گروہ کا ذکر کرنے کے بعد پہلے رکوع کے اندر ان دو آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا. اللہ رب العزت کے سامنے انسانیت کے اندر، انسانوں کے اندر تین گروہ ہیں. ایک مومنین متقین جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں. ایک کافر جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، اس طرح سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہ جو درمیان میں ہے، جو بظاہر مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا کسی بھی درجے میں، اس کو منافق کہتے ہیں. تو سورہ بقرہ کا شروع جو ہے انہی دو تین گروہ سے ہوتا ہے. متقین کا تذکرہ پہلے رکوع میں، ان دو آیات کے اندر کافروں کا تذکرہ ایک خاص انداز میں، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ شروع ہوگا اگلی آیات کے اندر. تو کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟ وہ یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیوں نہیں ایمان لانا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے قلب پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص کو ایک ڈیوٹی دی جائے اور پھر اس کو کہہ دیا جائے تمہیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اب اس میسج کا کوئی مطلب ہوتا ہے کہ مجھے ڈیوٹی بھی دی گئی ہے کام کرو اور کہا جا رہا ہے کہ جو کام کرو گے وہ پورا نہیں ہوگا، تو پھر خبر کیوں دی جا رہی ہے یا ڈیوٹی کیوں دی گئی؟ تو یہ کچھ کوشچن یہاں ارائز ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور بھیجا اس لیے کہ ان کو خبردار کرو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور پھر کہہ دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کہیں گے تو باریں گے نہیں آپ کے بعد. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی بار بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ تسلی ہے، مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہ کریں، ڈیڈیکیشن میں کمی لے آئیں، کسی طرح سے اپنی محنت میں کمی لے آئیں. نہیں، کرنا ویسے ہی ہے، لیکن یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے ریزلٹس ویسے نہ آئیں جیسے آنے چاہیے یا آپ کی جیسے ایکسپیکٹیشن ہے، تو اس وقت سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ رزلٹس آئیں جو آپ لانا چاہ رہے ہیں. مطلب کہ سب ایمان لے آئیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ مانیں گے آپ کی بات، لیکن نہیں بھی مانیں گے. آپ کو سر آنکھوں میں بٹھانے والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن آپ کو پتھر مارنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو یہ چلے گا، یہ تسلی دی جا رہی. لیکن یہاں پہ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف یہ منسوخ کر رہے ہیں کہ میں نے وہ روکا ہوا ہے اس لیے وہ نہیں آپ کی بات مانیں گے، تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نہ ماننے والوں کا کیا قصور؟ نہ یعنی کہ وہ نہیں مان رہے کیونکہ اللہ نے روک دیا. جب اللہ ہی نے روک دیا تو اب ان کا کیا قصور؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو سخت عذاب ہوگا. تو سخت عذاب سے وہ گزریں گے کیونکہ نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں نے روکے وہ نہیں مانیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ روک دیں اور پھر سزا بھی دیں تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. یہ ہے تقدیر کا مسئلہ. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو شروع کیا تھا اور شروع کرتے ہوئے چند احادیث ذکر کی تھیں ये तकदीर का कॉन्सेप्ट है क्या हदीस के अंदर भी, तो उसका खुलासा बयान कर देता हूँ। एक हदीस से पाक हमने जिक्र की थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने सहाबी से कुछ लोगों ने सवाल किया कि तकदीर के मुतल मुझे कुछ कन्फ्यूज है, सरजान है, तो आप मुझे क्लियर कर दें। तो उन्होंने कुछ आंसर किए थे कि अल्लाह ताला अगर सब लोगों का अजाब दे दे तो वो जालिम नहीं है, और सबको रहमत से माफ कर दे तो ये वो कर सकता है, और तकदीर पे ईमान लाना जरूरी है, और अगर कोई नहीं लाएगा तो बेशक वो जो मर्जी करे, वो हो पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और इस चीज को उन्होंने कई सहाबी से पूछा तो सबने एक ही जवाब दिया, ये वाला, यानी तकदीर पे ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिरि व अल-क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि तआला व अल-बाअ्थि बादल मौत। तो ईमान का हिस्सा है क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, अल्लाह की तरफ से है अच्छी या बुरी तकदीर। फिर एक और हदीस पाक में आता है कि सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि क्या आप कहते हैं कि जो हम इलाज के मुख्तलिफ तरीके करते हैं तो क्या ये तकदीर को बदल देते हैं कि अल्लाह ताला बीमार करते हैं, हम इलाज करते हैं, वो तकदीर बीमारी वाली खत्म हो जाती है या बदल जाती है? तो फरमाया कि नहीं, वो भी तकदीर की वजह से है, तुम्हारा इलाज भी तकदीर की वजह से। ये आंसर किया। और एक और हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम शरीफ की रवायत है, कि तुम में से हर एक का ठिकाना जन्नत और जहन्नम का लिखा जा चुका है। तो फिर साहबा ने कहा कि फिर हम आराम से बैठ जाते हैं, कोई अमल कोशिश नहीं करते, कि जब फैसला हो चुका है कि इसने जहन्नम में जाना है, इसने जन्नत में जाना है, तो फिर सारे आराम, यानी उसका इंतजार करते हैं उस फैसले का। तो कहा कि नहीं, अमल करते रहो, तुम्हें उस तौफीक की उस चीज की मिलेगी जिस जो तुम्हारा ठिकाना है। अगर तुम जन्नती हो तुम्हें जन्नत वाले कामों की तौफीक मिलेगी, अगर तुम जहन्नमी हो तुम्हें जहन्नम वाले कामों की तौफीक मिलेगी। इसी तरह एक और हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हर चीज तकदीर से है, कोई शख्स नाकाबिल और नाकारा है, डल माइंडेड है, वो भी तकदीर से है, और कोई बहुत शार्प है, काबिल और होशियार है, वो भी तकदीर से। साथ साथ एक और हदीस पाक मिलती है तिर्मिज़ी शरीफ की, कि एक बार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे इस चीज पर डिस्कशन कर रहे थे तकदीर, तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो नाराज हुए उस चीज पे और मना फरमाया कि डिस्कशन, यानी कि पहली उम्मतें इसीलिए हलाक हुई कि वो इस नाजुक मसले पे बहस करती थी, बहस मुबाहसा करती थी, इसलिए उम्मतें हलाक हुई, तो तुम ऐसा ना करो। देखिए ये बात मैं जिक्र कर रही थी, एक होता है समझना, जैसे सहाबी पिछली हदीस गुजरी पहले कि साहब एक शख्स ने सहाबा से क्वेश्चन किया कि मेरी इस सलजान को दूर करें, मेरी कश्मकश को दूर करें, उन्होंने आंसर किया, तो समझने में कोई इसमें कबाहत नहीं है। असल है कि डिस्कशन के एंड पे अगर समझना है तो फिर क्या करें, ऑब्वियसली फिर भी ईमान लाना। समझ ये तो नहीं कि समझ नहीं आई तो ईमान छोड़ देना है, ईमान तो फिर भी लेके आना है। तो ये बात की कि ईमान लाना जरूरी है। इसी तरह एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तखलीक से 50,000 बरस पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी थी और फरमाया कि उसका अर्श पानी पे है। तो ये भी जिक्र कर दिया कि तमाम की तकदीरें पहले से लिखी हुई हैं, यानी 50,000 साल पहले इंसान को पैदा करने से तकदीर लिख दी गई थी। और इसी तरह एक और हदीस पाक में मिलता है कि माँ के पेट में जब 4 महीने का एक बच्चा हो जाता है तो फिर फरिश्ता आता है, उसकी उम्र का लिख देता है, उसका रिस्क लिख देता है, वो नेक वक्त है या बदबख्त है वो लिख देता है, ये सब लिखने के बाद उस पर रूह डाल दी जाती है। अब इसके बाद फिर हमने डिस्कशन शुरू की थी कि ये सारा है सिनेरियो, ये सारा है कॉन्सेप्ट। अब इस जो बजाहिर एक उलझी हुई चीज को सुलझाए कैसे इंसान, بظاہر اس الجھی ہوئی چیز کو کیسے سلجھائے, اس کا سرا کہاں ہے, اس کا تو اس کا سرا دیکھنے کے لیے پھر ہم کوشش کریں گے آج, اور اگر آج بات مکمل نہ ہوئی تو اگلی بار بھی, کہ اس چیز کا کم از کم اسٹریم لائن ہو جائے چیز, پھر سمجھ میں آ جانا مکمل طور پہ یہ نہ آ جانا یہ غلط بات, لیکن کم از کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں اس چیز کو چار حصوں میں ڈسکس کروں گا, اور چار حصوں میں ڈسکس کرنے کے بعد اس کو پھر مرج کر دیں گے, یعنی کہ چار علیحدہ علیحدہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جو کہ انٹر لنکڈ ہوں گی آپس میں, پھر آخر میں ان سب کو مرج کر دیں گے تو پھر ایک کانسیپٹ بنے گا, اور پھر احادیث کی طرف لوٹیں گے کہ وہ بات کیا سمجھ میں آ رہی. وہ چار چیزیں کیا ہیں, کہ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات, اور اس کو میں نے اس طرح کہا تھا کہ وہ پاک ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اس کی صفات یکتا ہے, یعنی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہے اور انسان کی مرضی بھی ہے, ان دونوں کا آپس میں یہ کہاں لائی کرتی. تیسری چیز کہ جبر اختیار کا مسئلہ کیا ہے, ہم مجبور ہیں دنیا کے اندر یا ہمارا کوئی اختیار بھی ہے, مطلب کہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ وہ جہنم میں جانا ہے انہوں نے, تو وہ مجبور ہیں یا ان کا کوئی اختیار بھی تھا. اور چوتھی چیز جو ہے کہ یہ ایسے فیصلے اللہ تعالیٰ کیسے اور کیوں کرتے ہیں, مطلب کیا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈالنا ہے, اس شخص کو جنت میں ڈالنا ہے, اس کو اپاہج بنانا ہے, اس کو شارٹ مائنڈ بنانا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کیسے اور کیوں کرتے ہیں. تو یہ چار ہیڈنگز کے اندر ہم بات کریں گے, اور پھر اس کو انشاءاللہ اس کو مرج کریں گے. تو پہلی بات یہ جس کو پچھلی بار شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, صفات اس کی یکتا ہے, سبحان اللہ, جو ہم کہتے ہیں کہ ہر برائی, ہر عیب, ہر نقص, ہر خامی, اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ایک لمیٹیشن ہے, ایک حدیں ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات آزاد, وہ کسی بھی حوالے سے, وہ علم میں حد ہو, وہ کسی ڈسیزن میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی حد ہو, یعنی ہماری حدود ہوتی ہیں, ہم ہر ڈسیزن لیتے ہوئے قید ہوتے ہیں, میرا ایکسپیرینس اتنا ہے, میں نے اس سے مشورہ کیا, اس نے یہ کہا, اس سے مشورہ کیا, اس نے وہ کہا, یہ کچھ حدوں کے اندر ہم رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر حد سے پاک. اس چیز کو سمجھنا, یہ سمجھ میں آ جائے, جو کہ کئی بار مشکل ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو کنسپچلائز کرنا ایک ایسی چیز کے متعلق کہ جو ہر حد سے پاک, جب تو یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں کنسپچلائز کر رہا ہوں ایسی ذات کا کہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حد سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر خامی سے پاک ہے. اب کئی بار چونکہ حدوں والا انسان, خامی والا انسان, لمیٹڈ انسان اس چیز کو کنسپچلائز پوری طرح نہیں کر سکتا, تو وہ کئی بار اس کو سمجھ نہیں آتی. بات یہ بات پچھلی بار کی تھی کہ ایک تقدیر کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان ٹائم اور سپیس میں لائک کرتا ہے, مطلب کیا کہ میں ایک سپیس کو آکوپائی کرتا ہوں, میں ایک ٹائم کے اندر ہوں, یعنی کہ یہ ہم ٹائم کو کے اندر پریزنٹ, میں یعنی اس وقت موجود ہوں, نہ میں اس سے پہلے تو تھا, اس کے بعد ہوں گا یا نہیں ہوگا, لیکن ایٹ دا مومنٹ میں اس وقت ہوں, پاس میں گزر چکا ہے, فیوچر ابھی آنا ہے, میں پریزنٹ میں ہوں, میں نے ٹائم کو آکوپائی کیا ہوا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے آزاد ہے, نہ وہ سپیس کو آکوپائی کرتا ہے نہ وہ ٹائم کو, یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ اس چیز چار دیواری کے اندر ہے, خانہ کعبہ صرف ایک سمبل ہے کہ جہاں اس کے انوارات آتے ہیں, میں چار دیواری کے اندر اس کو نہیں قید کر سکتا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اور وہ ٹائم سے بھی آزاد ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ ماضی میں تھا یا حال میں ہے یا مستقبل میں, وہ ہر وقت ہے. اب یہ چیز انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ایسی ذات ہو جس کے لیے ٹائم کوئی چیز ہی نہ ہو, اور کئی بار یہ نہ سمجھ نہیں آنے کی وجہ سے تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو سمجھ آئے یا نہ آئے, یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. اور اس کی اگزامپل میں نے یہ دی تھی کہ جس طرح میں ٹائم کی ڈویژن کرتا ہوں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, ماضی, حال, مستقبل, تو اس میں دو چیزیں جو ہیں مجھے پتہ ہیں, حال بھی اور ماضی بھی, یعنی ماضی جو میں रिसेंट पास में गुजारा है वो मुझे याद है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कि मेमोरी सही है वो याद होता है, फ्यूचर का मुझे नहीं पता। लेट्स हम सब इस चीज को डिसाइड करें कल हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रिडिक्शन, अपने इरादे, अपनी अपनी सोच लिख देंगे, लेकिन मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि मैं ये कल करूंगा, हर सूरत करूंगा। मैं इसीलिए कहता हूँ इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं कर लूंगा, वरना मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। और कहा सिखाया कि कहो, क्योंकि तुम कोई श्योरिटी दे ही नहीं सकते। और ये हम जितने साल हमारी जिंदगी के गुजर के हम सैकड़ों मिसालें दे सकते हैं, जब हमने चाहा कुछ हुआ कुछ। तो कल का मैं जामिन नहीं हूं, कल का मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ इरादा होगा। अब ये शख्स यानी कि इंसान, अब इसको कहा जाए अपने पास्ट को लिखो, रिसेंट पास्ट को, दो दिन पहले एक दिन पहले की बात को लिखो, वो लिख देगा, कोई इशू नहीं, मैं लिख देता हूं। अब इसे कल का लिखो तो उस पर श्योरिटी नहीं, ये बात। अब अगर हम एक ऐसी जात को कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं कि जो कि टाइम से जात है, जिसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही चीज है, अब उसको अगर कहा जाए कि दो दिन बाद क्या, दो साल बाद क्या, 20,000 50,000 साल बाद की बात लिखो, उसके लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए दो दिन पहले की बात, उस साफ नजर आ रहा है कि ये होगा। और इसकी एग्जाम्पल मैंने इस तरह दी थी कि ये दुनिया में भी होता है कि कई बार इंसानों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स बिल्डिंग के ऊपर खड़ा, उसकी विजन बहुत बड़ी है, एक बिल्कुल नीचे खड़ा, उसको सामने दीवार नजर आ रही है, उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला की रात ऐसी है, उसको दूर दूर का हर चीज का पता है, टाइम के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी। और हम नीचे हैं, हमें कुछ पता नहीं, हम तो एक लिमिटेड हल्के के अंदर है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, कई बार ये बात समझ नहीं आती। तो इसको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये समझ ले के टाइम अल्लाह ताला की नहीं, जिस तरह पास को लिख सकता हूँ वो फ्यूचर को 100% श्योरिटी के साथ, उसके उससे ज्यादा यकीन के साथ लिख सकता है जिस यकीन के साथ मैं अपने पास को लिख सकता हूँ। ये उसका इल्म है, इसको इल्म गैर कहते हैं, कि अल्लाह ताला का इल्म है उसके लिए ये कोई चीज नहीं है, उसके इल्म में हर चीज है, हर चीज हर जगह हर तरह की उसके इल्म है। मैं एरिया के हिसाब से कहूं, मैं कहूँ कि उसे दुनिया के दूसरे कोने का भी पता है, उसे जन्नत का भी पता है, उसे जहन्नम का भी पता है, उसे मेरे पैदा होने से पहले आलम अरवाह का भी पता है, मेरे मरने के बाद क्या होगा उसे उसका भी पता है, उसे तो हर चीज का पता है, तभी तो उसे रब और खुदा और अल्लाह कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी एक और एग्जाम्पल मैंने दी थी कि लेट्स सपोज ये एक टेबल पड़ी है, तो मैं यहां बैठा हूं, मुझे पूरी एक ही एट ग्लांस वो नजर आ रही है पूरी एक वक्त में। अब कोई शख्स बाहर खड़ा हो, उसके आगे विजन थोड़ी नैरो हो, और उसको कोने वाला हिस्सा नजर आ रहा है, टेबल तो पूरी है, अल्लाह ताला का एट ग्लांस पूरा टाइम नजर आ रहा है कि ये होगा ये है, मुझे सिर्फ हाल का पता है कि ये है या मैक्सिम पास का पता है। तो ये मेरी खामी है, चीज तो वैसे ही मौजूद है। तो पहली चीज ये यकीन बैठ जाए कि अल्लाह ताला को पता है, अगर ये समझ में आ गई तो ये समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि पहले कैसे लिखी जा सकती है बात। तो अल्लाह ताला को क्योंकि पता था ये होगा, अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया कि ये होगा ये होगा ये होगा, ये इंसान पैदा होगा, ये करेगा वो ये करेगा वो ये करेगा ये करेगा, और फिर वो फिर जन्नत या जहन्नम में चला जाएगा, और वो लिख दिया गया कि ये होगा। अब जब ये लिख दिया गया वो महफूज है, तो अब मैं इसको दो तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, दो रेफरेंस। मैं कह दूं कि जो कुछ होना था वो अल्लाह ताला ने लिख दिया, ये पहले रेफरेंस, यानी दो एंड है। मैं इस एंड पे खड़ा होकर बात करूं कि जो कुछ होना था वो अल्लाह ताला ने लिख दिया, बिल्कुल ठीक बात है। मैं अब दूसरे एंड पे आता हूं कि जो अल्लाह ताला ने वहां लिखा वही हो रहा है, ये भी ठीक है, बिल्कुल एक ही बात के दो रुख है। जो होना था वो लिखा है, जो लिखा है वही हो रहा है, क्योंकि दोनों में कोई कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके इल्म में कोई ऐब नहीं है। तो जो होना था वो लिखा है, जो लिखा है वही हो रहा है। तो चंद रवायात में, कुरान पाक में, हदीस में इस रेफरेंस से बात कर दी जाती है कि जो होना था वो अल्लाह ने लिख दिया, जैसे 50,000 साल पहले लिख दिया गया, और कहीं भी ये कह दिया गया जो कर रहे हो वो लिखा हुआ है, तो दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। ये बात समझ आनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात, इसको एक और एग्जांपल से समझ लें एक जो टीचिंग फील्ड से हैं उनको ये एक्सपीरियंस है कि वो सारा साल बच्चों को पढ़ाते हैं। अब सारा साल पढ़ाने के बाद एग्जाम लेट्स सपोज पास हो, करीब हो, अब टीचर से कहा जाए कि आप जब प्रिडिक्ट करें कि इनमें से कौन से बच्चा टॉप करेगा, कौन सा बच्चा पास होगा, कौन सा बच्चा फेल होगा, वो प्रिडिक्शन अपनी लिखे और लिख के महफूज कर ले, एग्जाम हो रिजल्ट हो वैसे रिजल्ट आ जाए ऑलमोस्ट। अब वो प्रिडिक्शन उसने लिखी थी, अब बच्चों को पता चल गया प्रिडिक्शन मेरे टीचर ने लिखी थी, वो टीचर के पास आ रहा, टीचर आपने क्यों प्रिडिक्ट किया, आपने प्रिडिक्ट ना करते तो मैं पास हो जाता, आप प्रिडिक्ट ना करते तो मैं टॉप कर जाता। हर रखने वाले शख्स कहेगा इसका सर क्या था, वो तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर प्रिडिक्शन कर रहा था, उसके लिखने से थोड़ी कुछ हुआ है, उसके लिखने से पास फेल थोड़ी हुआ है, वो तो उनकी हालत को देख के उसने प्रिडिक्ट कर दिया। इसी तरह ये समझ लेना चाहिए, ये थोड़ी आगे बात बढ़ा रहा हूं, कि जब पहले लिखा जा रहा था तो हमारी प्रिडिक्शन होती है, अल्लाह ताला का यकीन है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई एरर नहीं, तो जब लिखा जा रहा था तो अल्लाह ताला को पता था इसने ये करना है, और जो को कर रहा है उसका वो जिम्मेदार खुद, वो अल्लाह ताला को ये नहीं ब्लेम कर सकता, अल्लाह हमने क्यों लिखा था, मैंने कर दिया। ये एक एस्पेक्ट है, मैंने बताया कि ये अलहदा अलहदा बयान करके फिर मर्ज करेंगे, तो मैं नहीं ब्लेम कर सकता अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि अल्लाह ताला आपने क्यों पहले लिख दिया, मैं तो अगर आप ना लिखते मैं करता भी ना, नहीं अल्लाह ताला ने लिखा वो जो मैं करूंगा, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिखा अल्लाह ने पहले इल्म की बेसिस पे, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार खुद हूं, क्योंकि जो मैंने करना था अल्लाह ताला ने वो लिखा है और जो लिखा है वो मैं कर रहा हूं। अब थोड़ी बात समझ में आनी चाहिए कि मैं जिम्मेदार खुद हूं, लेकिन इल्म की बेसिस पहले लिखा गया, अब अगर मैं ये कह दूं कि ये जो कर रहा हूं पहले लिखा गया था तो बात ठीक है, लेकिन इसकी मैं जो कर रहा हूं उसका ब्लेम अल्लाह पे नहीं दे सकता कि आपने क्यों लिखा। उसी स्टूडेंट की तरह कि जो फेल होके कहे कि आप ना लिखते मैं फेल ना होता, नहीं, लिखने से फेल होने का क्या ताल्लुक, लिखा है इल्म की बेसिस पे, फेल हुआ हूं फेल वो बच्चा हुआ है अपनी नालायकी की बेसिस।
इट्स नॉट प्री डेस्टेंड, इट इज प्री रिटन।
जी
तो ये इन दो टर्म से जो है बहुत, इट्स नॉट प्री डेस्टेंड,
जी
इट इज प्री रिटन।
सॉरी एग्जांपल दिया, ये है कि ये तो प्रेडिक्शन है ना एक इंसान की, अल्लाह ताला की
नहीं हुई, मैंने जिक्र किया ना कि हमारी प्रेडिक्शन है, समझाने के लिए बात, अल्लाह ताला की प्रेडिक्शन तो नहीं है, यकीन है
ना। मैं तो मतलब ये तो अल्लाह ताला की यकीन, मुझे यकीन है कि ये चीज उसने लिख दी है।
जी, वो आगे कॉन्सेप्ट चलेगा तो वो समझ में आएगी, इसलिए मैं कह रही फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में से मैं ये एलेबरेट कर रहा हूँ कि पहले कैसे लिखा जा सकता है और जब लिखा गया है तो वो कैसे हो रहा है। एक ही बात है, लिखा इल्म की बेसिस पे क्या है और जो हो रहा है उसको पहले लिखा गया। मैं यहाँ खड़े होकर कहूँ कि जो लिखा है जो होना था वो लिख दिया, या मैं यहाँ खड़ा होकर कहूँ कि जो लिखा गया वो हो रहा है, ये एक ही बात है। फिर जहां तक अभी बात है, अभी अगले स्टेप्स आने जो आपसे मेरे सवाल आता है, अब दूसरी बात पे जाते हैं और वो ये है कि अल्लाह ताला और इंसान की मर्जी, कि शायद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो अब इससे इसको लेंगे, अब वो पार्ट हमने छोड़ दिया फिलहाल, गो के इंटरलिंक होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल इस पर फोकस करो कि एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और एक इंसान की मर्जी। अल्लाह ताला ने इंसान को भी एक विल दी है, एक मर्जी दी है, और इंसान उस विल को यूज कर सकता है और करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अल्लाह ताला की मर्जी इंसान की मर्जी। अब इसको समझने के लिए कि एक एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक कमरा हो, इसमें एक बच्चा खेल रहा हो और बाप बैठा हो, अब यहां पे कोई इंसान एंटर हो और पूछे बाप से कि बच्चा आपकी मर्जी से खेल रहा है, तो कहेगा हाँ मेरी मर्जी से खेल रहा है, मैं चाह तो खेल। अब कोई पूछे आप बच्चा अपनी मर्जी से खेल रहा है, हाँ वो अपनी मर्जी से खेल रहा। अब जहां पे भी दो वेल्स हैं, एक बाप की और बेटे की, दोनों एट अ टाइम है, दोनों कह रहे हैं कि बाप भी कह, बाप कह रहे हैं मेरी भी मर्जी है उसकी भी मर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल कोने में कहीं हीटर पड़ा है, बच्चा उसकी तरफ पढ़ता है, अब बाप रोक लेता है। अब कोई कहे कि बच्चा आपकी मर्जी से रुके, हाँ मैं चाहता था ना पढ़े, मैंने रोक लिया, मेरी मर्जी से रुके। अब कोई उसे कहे कि बच्चा अपनी मर्जी से रुके, देखा नहीं बच्चा तो जाना चाह रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको रोक लिया। अब यहां पे भी दो विल हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं, बच्चा जाता है बढ़ना, बाप जाता है रुक जाए। चली किसकी मर्जी? बाप की, वो ताकतवर था, उसका होल्ड था, उसकी कुवत थी, वो उसकी यानी पार थी, वो उसने पकड़ लिया उसको, उसकी चली, बच्चे की नहीं चली। इसी तरह आप समझें कि एक इंसान की मर्जी है और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशक एक विल दी है, मर्जी दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, तो कहेगा आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, मैं कहूँगा जी मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत और इंसान की मर्जी यूनिट एक्शन होती है, एक ही होती है, वो काम हम होता देख रहे होते हैं। अब कोई कहे मैं आप मुझसे पूछे आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, कहा आप कोई पूछे आप अल्लाह की मर्जी से बोल रहे हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल अल्लाह की मर्जी से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की भी मर्जी है, मेरी भी मर्जी है, जिस तरह बाप की भी मर्जी थी, बच्चे की भी मर्जी थी। लेकिन जहां पे मेरी मर्जी कुछ और होगी, अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और होगी, मेरी विल कुछ और होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की विल कुछ और होगी, होगा वो जो अल्लाह ताला की विल, क्योंकि वो अल्लाह की ताकत है, वो चाहे जो चाहता है करता है, उसकी उसको कोई उसकी विल को कोई रद्द नहीं कर सकता। जो कब हम नहीं होता देखते, वो अल्लाह चाह नहीं रहे होते ये हो, इसलिए हम कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, या अल्लाह ताला चाह रहे थे, अल्लाह की मर्जी थी। ये वाला पहलू थोड़ा समझ में आना चाहिए। या इस तरह जो एग्जांपल दी उस तरह भी है, इसी तरह कोई शख्स जानवर को रस्सी लेकर फिरता रहे, जानवर चलता रहता है, वो लाद लेकर फिरता रहता है, जाने की और जाने लगता है, उसको वो खींच लेता है, उसकी मर्जी चलती है, जानवर तो जाना चाहे उसकी भी विल थी। तो इस तरह कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जब विल टकराती है तो ताकतवर की विल चल जाती है, उसकी मर्जी चल जाती है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इंसान की भी मर्जी है, दोनों के अल्लाह ने इंसान को विल दी है, इख्तियार दिया है, लेकिन जहां अल्लाह ताला भी चाहते ये हो वो होता है, जहां अल्लाह ताला चाहते ये ना हो वो नहीं होता। इंसान उसे मजबूर फील करता है कि मैं चाह भी रहा था, ये हुआ क्यों नहीं, ये हुआ नहीं। अब यहाँ पे एक और टर्म समझ लेनी चाहिए, वो है फाइल हकीकी की। फाइल हकीकी, फाइल कहते हैं काम करने वाला, हकीकी कहते हैं हकीकत में जो कर रहा हो। तो अल्लाह ताला की जात फाइल हकीकी है, मतलब कि हकीकत में जो काम करती है, मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो अल्लाह की मर्जी से बोल रहा हूँ, तो फाइल हकीकी अल्लाह है। मैं इसको अपनी तरफ मंसूब नहीं कर सकता कि मैं बोल रहा हूँ, या इसीलिए कहते तकब्बुर इसी दिन नहीं सोचता कि वो खुद कुछ कर ही नहीं रहा, जो कर रहा है अल्लाह की मर्जी से कर रहा है। तो करने वाले का कमाल है, इसका क्या कमाल है? फाइल हकीकी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रात है। ये समझ में आ जाए तो इंसान किसी चीज़ को अपने से मंसूब ही ना करे, अपनी किसी खूबी को, जाहिरी हो या बातनी हो, किसी तरह मंसूब ही ना करे। कहेंगे हर चीज अल्लाह की मर्जी से, तौफीक से हो, इसीलिए ये तौफीक का वर्ड ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह की तौफीक के बगैर ना कोई गुनाह से बच सकता है ना कोई नेकी कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि जब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, तौफीक उसने ही देनी है, तो यहाँ सिर्फ ये बात समझनी चाहिए कि ये मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं गुनाह से बचा, अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं नेकी करूं तो मैंने नेकी की, अगर वो ना चाहता मैं जो मर्जी कर लेता ना मैं गुनाह से बच सकता था नेकी कर सकता, तो मंसूब उससे करो। इसलिए कहा गया सिखाया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। तो फाइल हकीकी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि फाइल हकीकी, इसके लिए एक एग्जांपल वो है जो पपेट्स की होती है। तो पुतली तमाशा हो रहा होता है, उसमें गो के हमें नजर आ रहा होता है कि बजाहिर ये पुतलियां हरकत कर रही होती, हालांकि वो पुतलियां नहीं हरकत कर रही होती, उसके पीछे डोर होती है जो किसी और के हाथ में होती है, वो उसको मूव कर रही होती है, बजाहिर हमें नजर आता है ये कर। इसी तरह हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारी डोर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में, वो जैसे चाहते हैं हमें हमसे करवाते हैं, उसकी विल ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ भी आपके जहन में शायद और क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप फोकस करें इसी पॉइंट पे, एक समझने की कोशिश करें फाइल हकीकी अल्लाह, अल्लाह ताला की जात, कि वो जो चाह रहा है वो हो रहा है, वो हर चीज की डोर उसके हाथ में। कुरान पाक ने इसको मल्टीपल तरीकों से कहा, एक हदीस पाक जो लास्ट टाइम पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी कुलूब मेरी दो उंगलियों के दरमियान, मैं जहां चाहता हूँ उसको फेर देता हूँ, नेकी पे या गुनाह पे। इसी तरह एक और कुरान पाक की जो टर्म है वो ये कि इंसानों के पेशानी के बाल अल्लाह के हाथ में, ये अल्लाह ताला ने कहा आखिर जुम्बे नासिया, कि अल्लाह ने निशानी से सबको पकड़ा हुआ है तो जहां जाता उसको मोड़ देता। तो जो असल फाइल है वो अल्लाह ताला, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस दुनिया के अंदर आ रहा है उसके पीछे अल्लाह ताला का हाथ, जो अल्लाह ताला को कहते हैं कि कोई पत्ता भी नहीं गिर सकता मेरी मर्जी के बगैर, एक हरकत भी कोई नहीं कर सकता मेरी मर्जी के बगैर, कुरान हदीस में बार मेंशन है। तो वो उसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला उसका फाइल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अ वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल जिक्र किया, इनसे कहें कि मैं मफहूम है कि मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं अपने लिए, ना किसी नफे का ना किसी नुकसान का, हाँ अल्लाह बेचा है। तो अल्लाह ताला नफा भी देते हैं, अल्लाह ताला नुकसान भी देते हैं, फाइल वही है, करने वाली जात वही है। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ यक़दिर, कि अल्लाह ताला जिसका रिज़्क चाहते हैं खोल देते हैं, जिसका रिज़्क चाहते हैं तंग कर देते हैं। तो करने वाली जात अल्लाह की है। वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, हाँ जो अल्लाह चाहते वो होता है, अल्लाह की विल चलती है। वो मैं पहले बता दिया कि अल्लाह की विल चलती है, उसके हाथ में सब कुछ है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, कि जो मुसीबत भी आती है इंसानों की बुराई की वजह से आती है। और दूसरी जगह कहा मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन कबल अन नबराहा, कि जो मुसीबत आती है जमीन पर या तुम पर वो एक किताब में पहले से दर्ज है। और एक जगह कहा मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिज़्निल्लाह, जो मुसीबत तुम पे आती है अल्लाह की मर्जी से आती है। तो वही जो बातें हम कर रहे हैं उसको अल्लाह ताला कितने अंदाजों में बयान कर रहे हैं। और एक ये आयत ये डायरेक्ट इसी मीनिंग को दे रही है कि दो विल और चलती अल्लाह की है, मतलब फाइल हकीकी अल्लाह क्या, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में मिट्टी उठा के फेंकी काफिरों की तरफ, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको मेंशन किया, कहा कि फलम तक्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह कतलहुम, कि आपने उस जंग के अंदर काफिरों को कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया। फाइल हकीकी मैं था, जाहिर में आपके हाथ थे, मैं कत्ल कर रहा था। और कहा वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, और जब आप मिट्टी फेंक रहे थे आप नहीं फेंक रहे थे, मैं फेंक रहा था। जाहिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठा के फेंक रहे थे, नहीं कहा कि आप नहीं फेंक रहे थे, मैं फेंक रहा था, मैं फाइल हकीकी था, मैं आपसे करवा रहा था। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि जहां पे एक तो दो विल्स हैं, होता वो हमें जो होता नजर आ रहा होता है वो दो विल्स एक तरफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठा के फेंक रहे थे, अल्लाह ताला भी चाह रहे थे, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूख किया कि ये मैं करवा रहा था, मैं कर रहा था। तो यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं, अल्लाह ताला कर रहे थे, तो बात ये है कि दोनों विल्स थी, उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के फेंकी, उधर से अल्लाह ताला भी ये चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूख कर ली, मैंने किया, अगर मैं ना चाहता आप कैसे कर सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट लिया, एक शख्स बोलता है अपनी मर्जी से, उसके पीछे अल्लाह की विल होती है। एक को स्ट्रोक हो जाता है, फॉलिज हो जाता है, वो बोलना चाहता है बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसको अल्लाह की नहीं मर्जी। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, फाइल हकीकी अल्लाह की ज़ात है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तकदीर का मसला एक मेन अहम प्राइमरी चीज है मुसलमानों के लिए अल्लाह पर यकीन की। मतलब क्या कि कुरान पाक की सारी टर्मिनोलॉजीज तवक्कुल, तफवीज, सबर, शुक्र, ये सारी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड विचार इस वक्त जहन में आई। दीन का एक बहुत बड़ा पोर्शन, या यूं कह दिया जाए सारा पोर्शन भी कह दिया जाए, तो इस टाइम मुबालगा राय ना हो कि वो तकदीर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर ये समझ में आ गई तो अल्लाह ताला की जात का इंसान इदराक कर सकता है, उसकी माफ़त उसे हासिल हो जाती है। अगर मुझे पता चल जाए कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे अल्लाह ताला की जात है, तो मैं चीज़ों से असल लेना ख़त्म कर दूंगा, मेरा खौफ ख़त्म, मेरी मोहब्बतें ख़त्म, मेरा डायरेक्ट अल्लाह से रिलेशन होगा। क्योंकि मैं सारी इस चीज़ को तो मैंने तमाशा समझा ना, कि इसकी डोर किसी और के हाथ में है, मैं इससे क्यों इंप्रेस होता हूँ, मैं इससे क्यों खौफ खाता हूँ, मैं इससे क्यों डरता हूँ। तो ये गम इंसान का ख़त्म हो जाता है, खुशी इंसान की ख़त्म हो जाती है, ये कंट्रोल में हो जाती है। ये जो अभी एक आयत ऊपर पड़ी उसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया, कहा इससे रिलेटेड आए थे कि जो मुसीबत तुम पे आती है वो पहले से दर्ज है, और अल्लाह ताला ने आगे जिक्र किया कि ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब तुमसे कोई चीज छिने तो गम ज्यादा ना हुआ करो, और जब कोई चीज मिले तो खुश ना हुआ करो। ऐसे इंसान काम हो जाता है क्राइसिस सिचुएशन में, सारा यू एंड क्राइस सब खत्म, और वो मोमिन होता है जो अल्लाह ताला कुरान में डिस्क्राइब करते हैं, ये है मोमिन। अब मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जंग है, कहा जा रहा है लश्कर आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मैंने काफी, कोई असर ही नहीं आगे, कोई खौफ, कोई दबदबा, कोई हैबत, कोई तारी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका यकीन बना हुआ था, इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर था। तीसरी चीज जहां पे जो जिस हेडिंग के अंदर बात करनी है वो ये कि जबर इख्तियार, कि इंसान मजबूर है या मुख्तार है, ये क्या कॉन्सेप्ट? यानी कि जब कहा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब करवा रहे, तो इंसान की ये तो जिक्र कर दिया कि मर्जी है, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी के अंडर, अगर अल्लाह ना चाहे ये कर ही नहीं कुछ सकता। फिर अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि जब अल्लाह की मर्जी के अंडर ही आप उसको रख रहे हैं, तो फिर भी असल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी थी, तो फिर भी मजबूर हुआ। बेशक वो मर्जी उसकी अपनी है और आप कह रहे हैं वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी के अंडर ही है ना, अल्लाह की मर्जी के अगेंस्ट तो नहीं कुछ कर सकता। तो जब नहीं कर सकता तो फिर जजा सजा के कॉन्सेप्ट क्या? तो यहां पे ये बात ध्यान में रखें कि इंसान कुछ हिसाब से मजबूर है, कुछ हिसाब से मुख्तार। मुख्तार का मतलब जिसका अख्तियार हो, मजबूर का मतलब कि जो 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 के अल्लाह के विल के अंदर ही हर चीज करता। कहने का क्या मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं पे इंसान को मजबूर करेंगे, कहीं पे नहीं करेंगे। हर चीज की, यानी कि हर चीज होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मर्जी को हर जगह यूज नहीं करेंगे। जैसे उस बच्चे की एग्जांपल में, जब बच्चा खेल रहा था तो बाप भी उसे रोक रहा था, वो करने दे रहा था बच्चे को, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ जगह पे इंसान को करने देते हैं वो जो मर्जी करे, नहीं उसको पकड़ते, नहीं उसको मजबूर करते, और कई जगहों पर उसको मजबूर कर देते, उसको पकड़ लेते, वो करना चाह रहा हो तो उसको नहीं करने देते, वहां वो मजबूर है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर ही एनालिसिस शुरू करें तो हम ये देखेंगे कि हम बास चीज़ों पे मुख्तार होते हैं, बास चीज़ों पर मजबूर होते हैं। फॉर एग्जांपल, पैदाइश से अगर शुरू करें, जहाँ मेरे पेरेंट्स किसने बनना है, मुझसे तो नहीं कुछ पूछा गया, मेरा कोई इसमें इख्तियार नहीं था, अल्लाह ताला ने फैसला किया। फिर उसके बाद जिंदगी के अंदर क्या हालात आने हैं, मुझे क्या सर्कमस्टेंसेस दिए जाएंगे, मेरे पेरेंट्स अमीर हैं, गरीब हैं, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, कितनी नहीं है, तो ये मेरे सब इख्तियार में नहीं है, मतलब कि कुछ चीज़ों में मजबूर हूँ मैं, मेरे तो ना मुझसे कोई पूछता है, ना मुझे कोई ऑप्शंस मिलती हैं। इसी तरह आगे चलते जाएं, रिस्क का जैसे पहले लिख दिया गया है, मैं मजबूर हूँ, मैं जितना रिस्क मिलना है मुझे मिलना है। एज कितनी है, मुझसे तो नहीं पूछा जाएगा मरते हुए, जब मौत आनी है उसने आना है, कहाँ मौत आनी है, कब आनी है, इसी तरह मल्टीपल चीज़ें हम जिंदगी में देखते हैं कि जहाँ हम फील करते हैं मजबूर। एक पोर्शन तो ये कि जो कि डिसाइडेड हैं कि यहाँ यहाँ ये इस पे ये सर्कमस्टेंस था, फिर हम डेली लाइफ में देखते हैं, यानी हर रोज कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि हमारे साथ में मिसहैप्स होते हैं, हर एक की जिंदगी में होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से होते हैं। किसी का मिसहैप कुछ हो जाता है, कुछ जिस्मानी तौर पे नहीं सही, एक मिसहैप, कोई जिस्मानी तौर पे सही है, उसकी शादी हुई, बीवी से नहीं बन सकी, बीवी के शौहर से नहीं बन सकी, एक और मिसहैप जिंदगी का। फिर इसी तरह औलाद पैदा हुई, वो माजूर पैदा हो गए, एक और मिसहैप, औलाद के गम मल्टीपल किस्म के हैं, मिसहैप्स। फिर जिंदगी के अंदर बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, लोग फौत हो जाते हैं, गम मिलते हैं, चीजें छिन जाती हैं, चोरी हो जाती है, वगैरह वगैरह। एक लिस्ट बनाई जा सकती है एक मिसहैप्स की, और सारे मिसहैप्स में पूछा जाए उस बंदे से कि ये आपकी मर्जी से सब कुछ हुआ है, आप चाहते थे ऐसा? होकर मैं तो नहीं चाहता, हो रहा है, मैं मजबूर। तो ये इन वाकयात में, इन मिसहैप्स में वाकई इंसान मजबूर है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की विल चलती है कि इस बंदे को यहां भी मिसहैप दो, इसको यहां दो, इसको यहां दो, इसको यहां दो, इसको इस अंदाज से दो, इसको इस अंदाज से दो, इसको इस अंदाज से। क्यों वाला पोर्शन आगे आना है कि क्यों ये फैसला होता है, कैसे होता है, वो अभी पोर्शन आना है। अभी ये से बात हो रही है कि मिसहैप देने हैं यहाँ 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 यहाँ, ये फैसले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो रहे होते हैं, उसकी विल चल रही होती है। मैं मजबूर फील करता हूँ अपने आप को, मेरी तो विल है ही नहीं, मैं तो अपने, मेरा अख्तियार ही कोई नहीं, मैं, मेरी पसंद ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसी आपकी कोई पसंद नहीं इन मामला, ये अल्लाह ताला से क्रिएट की जाती है बात। लेकिन साथ साथ हम ये भी सोच देखते हैं और सोच सकते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजों में मेरी विल होती है, मसलन फॉर एग्जांपल बात जो कर रहा हूँ ये अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, आप लोग जो आए अपनी मर्जी से आए, इसी तरह जो स्टूडेंट पढ़ता है लिखता है वो अपनी मेहनत कर रहा होता है, उसकी अपनी विल होती है उसमें जो करना चाह रहा होता है। तो ऑप्शन मल्टीपल होती है, इंसान ऑप्ट करता है कि मैं इसको ऑप्ट कर लूँ, उसकी विल होती है उसके अंदर। यानी कि सुबह से शाम तक मेजोरिटी काम हमारे हो रहे होते हैं जो हमारी विल्स के मुताबिक हो रहे होते हैं, एक्चुअली वो अपनी मर्जी से इख्तियार होता है हमारा उसको करने। तो अब वो पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हो रहा कि वहां होता है इख्तियार, लेकिन पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी विल होती है, तब हम कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, इंसान अगर जिंदगी को डिवाइड करे तो दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, यहां मुख्तार है, यहां मजबूर है। यानी कि वो दोनों जगह अल्लाह की मर्जी तो है, उस पर वो तो बात होगी कि पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत फाइल हकीकी है, वो उसकी मर्जी तो है, लेकिन हम अपने हवाले से बात करें तो कहीं हम मजबूर हैं, कहीं हम इख्तियार। अब ये ज़हन में रखना चाहिए कि जहां मजबूर है इंसान, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कभी नहीं पूछेंगे ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो तो मजबूर था, उससे तो उसकी तो कोई मर्जी नहीं थी। लेकिन जहां वो मुख्तार था, उसका अख्तियार था, वहां अल्लाह ताला उसे पूछेंगे तुमने इख्तियार होने के बाद ये ऑप्ट क्यों किया, मर्जी तो उसकी है, विल तो है ना, वो अपनी विल से ही कर रहे हैं, तो अल्लाह ने पूछेंगे ये तुमने ऑप्ट क्यों किया। या दूसरे लफ्जों में इसका दूसरा पहलू समझने के ये है कि मजबूरी और मुख्तारी ये हमें समझ में आ गई कि है जिंदगी में कुछ जगह मजबूर है, कुछ जगह मुख्तार है। जहां मजबूर है वहां हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं पूछेंगे कि क्यों ये हुआ, जहां मुख्तार है, जहां हमारा इख्तियार है, विल है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे ये तुमने क्यों ऑप्ट किया, ये तुमने अपनी विल से क्यों किया। तो आंसरेबल इंसान, ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया, ये मैंने इसलिए किया। अब यहां पे बस इतना समझ लें तीसरी बात कि जब जहां वो मुख्तार है, जहां उसकी विल है, जहां वो कुछ अपनी मर्जी से करता है, वहां अल्लाह ताला उसको मजबूर नहीं करते पीछे अपनी विल से कि नहीं ये नहीं ये करो। मिसाल के तौर पे एक शख्स अपने मर्जी से काफिर हो रहा है, अल्लाह उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे नहीं नहीं मोमिन हो, और एक शख्स मोमिन हो रहा है उसको जबरदस्ती पकड़े नहीं काफिर हो जाओ, ये नहीं अल्लाह ताला करो। अल्लाह ताला ऑप्शंस देते हैं, ये उसकी ऑप्शन है जो मर्जी करे, फाइल हकीकी फिर भी वो है। उससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि बुराई की तरफ जाते हुए बंदे को अल्लाह ताला क्यों नहीं रोकते, रोक सकते, वही क्वेश्चन है, वो बाद में आंसर करते। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि वो शख्स अपने इख्तियार से चलता है, अल्लाह ताला उसको करने देते हैं, उसमें अल्लाह की विल भी वही होती है कि ठीक है तुम जहाँ चाहो। इसलिए कुरान पाक की बहुत सी आयतें समझ में आ जाएंगी जब अल्लाह ताला कहेंगे तुमने जुल्म किया मैंने नहीं जुल्म किया, तुमने ऑप्ट किया मैंने नहीं ऑप्ट किया। एक जगह अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमा दिया कि बात मैंने खोल दी है, जिसका दिल चाहे काफिर हो, जिसका दिल चाहे मोमिन, इस अंदाज में बात कर दी, जिसका दिल चाहता है काफिर और जिसका दिल चाहता है काफिर। अल्लाह ताला नहीं कि जबरदस्ती मोमिन को काफिर और काफिर को मोमिन कर दिया कि मुझे इंसान के मैं मजबूर था मैं तो मोमिन हो गया, मैं तो मजबूर था मैं तो काफिर हो गया। नहीं, इसमें इंसान की मर्जी होती है। फिर ऑन भी ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला मुझे तो हदायत ही नहीं मिली। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं उसका दिल मान गया था, वो अपनी मर्जी से वहां से हटा था। दिल में बात आ गई थी कि बात सही है, अल्लाह कहेगा वो अपनी मर्जी से उसने ऑप्ट किया कुफर को, उस तकबर को, इसलिए उसको सजा दी जाएगी, वो उसकी विल पे उसको सजा दी जाएगी। तो जन्नत और जहन्नम जो कुछ भी है वो इंसान की विल पे उसके नतीजे हैं। वहां पे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम जहां मजबूर थे वो क्यों हुआ, तुम गरीब क्यों थे, तुम अमीर क्यों थे, तुम इस घर में क्यों पैदा हुए, इस घर में क्यों है, तुम्हारे साथ मिसहैप ये क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं पूछेंगे अल्लाह ताला इंसान को, जहां वो मुख्तार था वो पूछेंगे, हाँ तुम पे मुसीबत आई तुमने क्या किया, रिएक्शन क्या था, शिकवे थे या सबर था। ये तो तुम्हारी हत्यात में था, शिकवे थे तो सजा है, अगर सबर था जजा है। इसी तरह बाकी चीजों को भी इंसान समझ सकता है। तो ये जबर इख्तियार सब क्लियर होना चाहिए कि कई जगहों पे मजबूर, कई जगहों पे इख्तियार, जहां पे मजबूर वहां पे आंसरेबल नहीं है, जहां पे इख्तियार है वहां पे आंसरेबल है। और अल्लाह ताला चूंकि जहां पे इख्तियार इंसान को दिया गया है वो ऑप्ट करता है, तो अल्लाह ताला किसी को मजबूर नहीं करते कि तुम ये ना करो ये ना करो। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने कहा राइज होता है कि क्यों नहीं अल्लाह ताला उसको रोक देते वो करने से, गुनाह करने से, या तो इसकी वजह ये है वो एक्चुअली क्यों के अंडर आना है, लेकिन यहाँ पार्शली उसको डिस्कस कर देता हूं कि फिर दुनिया का मकसद क्या है। अगर इंसान को यही करना था अल्लाह ताला ने कि पैदा कर उसको मजबूर करते गुनाह ना करो नेकी करो, तो फिर दुनिया का कोई मकसद नहीं। अल्लाह ताला यही तो समझा रहे हैं कि इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि मैंने रास्ता बता दिया है तुम कुछ शुक्र करते हैं कुछ कुफर करते, यही मकसद है। अब जो कुफर कर रहे शुक्र कर रहे वो अपने एक्ट का खुद रिस्पॉन्सिबल। दूसरी बात यह कि इसको इस मिसाल से समझना चाहिए कि एक शख्स के पास दो ऑप्शन हो, फॉर एग्जांपल दो चीजें, एक पाक साफ एक गंद है, वो भारी है वो खुद नहीं उठा के रख सकता अपने ऊपर उठा के लेके जाना है, तो सामने एक ताकतवर इंसान खड़ा है कहता क्या ऊपर रखना है, वो कहता है कि ये चीज ऊपर रख, वो रख देगा उठा के उसको दे देगा। अब अगर उसने गंद का फैसला किया, बुराई का फैसला किया, बुरी चीज का फैसला किया, तो उसको कसूरवार कहेंगे कि तुमने डिसीजन लिया क्यों ये उठाया, जो रास्ते से गुजरेगा वो कहेगा तुम्हारा फैसला था, वो कहेगा नहीं उसने रखा है, नहीं उसने नहीं रखा, उसने पूछा था क्या रखा, उसने वो रख दिया उठा के तुम्हारा, तो उसका क्या कसूर है, तुम्हारा कसूर है, ऑप्शन तुम्हारी थी। इसी तरह अल्लाह ताला इंसान के सामने दोनों चीजें रखते हैं, इंसान कहता है कि अल्लाह नेकी करनी है, अल्लाह ताला कहता है रास्ते खोल दे, वो कहते नहीं मैं बुराई करनी है, अल्लाह कहते करो बुराई रास्ते खुला। इसीलिए वो कुरान पाक में लिखा होता है कि जो नेकी और हदायत का तलबगार है वो उस पर चल पड़ता है, उसको हदायत मिल जाती है, जो गुमराही करता है उसको गुमराह हो जाए, क्योंकि यहाँ आजमाइश है, यहाँ से नहीं जबरदस्ती करेंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने फिर भी बंदों में लगाया कि इसको बुलाओ, जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आवाजें लगाने वाले फिर भी भेज दिए, इनको आवाजें दूर लगाओ, इन्हें समझाओ, इनको क्लियर करो बात, इनको जगाओ, इनको इनको वार्न करो कि ये आए इस तरफ, ये अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह ताला इस चीज को ना रखते, वो ऑप्शन रख देते कि जो मर्जी करे, तो फिर भी ये अल्लाह ताला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि मजबूर तो नहीं करते, लेकिन ऐसे बंदों को लगा देते हैं, ऐसी निशानियां भेज देती हैं कि वो मिसहैप्स होते हैं, तो उस वक्त इंसान को होश आता है, ओहो मैं कहाँ खोया हुआ था, तो अल्लाह की रहमत होती है मिसहैप, इस तरह से वार्न करते हैं मुख्लिफ अंदाज से, लेकिन मजबूर फिर भी नहीं करते। तो ये तीसरी चीज इंसान क्लियर होनी चाहिए। और चौथी हेडिंग जो है ये सब कुछ क्यों होता है। अब क्यों के दो पहलू हैं, एक जो इंसान समझ सकता है और एक जो इंसान नहीं समझ सकता। पहले से बात जब क्लियर कर कि इसमें से क्यों का एक पोर्शन इंसान समझ सकता है, दूसरा पोर्शन नहीं इंसान समझ सकता, और जो समझ सकता है वो अभी जिक्र हुआ कि अगर अल्लाह ताला फैसला करते कि नहीं सारे नहीं को सारे ये हों, तो अल्लाह तआला कुरान में भी फरमाया अगर मैं चाहता ना तो सारे हिदायत याफ्ता, लेकिन मैं नहीं चाहता, अल्लाह तआला ने मैं नहीं चाहता इसलिए जहन्नुम भरेगी। कुरान पाक के ये अल्फाज कि मेरी बात पूरी होके रहेगी कि जहन्नुम भरेगी, ये अब क्लियर हो जाती थी बात कि क्या बात है कि अल्लाह ताला को पहले ही पता है कि इतने लोग जाएंगे जहन्नुम, तो लिख दिया गया। तो अल्लाह ताला ने इस एंगल से कहा कि मेरी बात जो मैंने लिख दी है जो होनी है वो पूरी होके रहेगी कि जहन्नुम भरेगी। सूरह हूद की आयात बड़ी बड़ी चौंका देने वाली है कि अगर मैं चाहता तो सारे इंसान हदायत तो होते, लेकिन मेरी बात पूरी होकर रहनी है कि जहन्नुम को मैंने भरना है इंसानों से। तो इसलिए पहली चीज तो ये समझ में आता है कि जब इम्तहान होता है, आजमाइश होती है, टेस्ट होती है, तो वहां पे ऑप्शन दी जाती है। अब एग्जामिनेशन हॉल हो, इन्विजिलेटर देख रहे होंगे कौन बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा गलत कर रहा है इन्विजिलेटर थोड़ी बताते हैं कि यार नहीं इसका आंसर ये है, वो तो करने देता है एग्जाम। इसी तरह अल्लाह ताला देख रहे हैं बुरा कर रहा है ये गलत कर रहा है तो करने देते हैं एग्जाम। तो पहली चीज ये समझ में आने वाली बात है। अब दूसरी बात जो समझ नहीं आती इंसान को, वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि पोर्शन जो समझ नहीं आता जो पहले बता दिया कि नहीं आता आ सकता इंसान को, उसकी वजह है वो वजह वो पहले वाली है कि अल्लाह ताला की जात को इंसान कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकता। क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल कि मेरे रिसोर्स लिमिट है, मैं डिसीजन एक लेना है। अब एक बच्चे का डिसीजन देखेंगे फर्क होगा, उसके सामने एक मैटर रख दे उसको फैसला करो कि फैसला करेगा ये होना चाहिए, उसका सिर्फ 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस। एक 40-45-50 साल के सामने भी मैटर रखें वो अपने तजर्बे अपनी महारत अपने एक्सपीरियंस उसकी बेसिस पे कहकर ये होना चाहिए। एक फील्ड के एक्सपर्ट का डिसीजन कुछ और, एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं उसका डिसीजन कुछ और, यानी हर फील्ड का अगर कोई मैटर रखा जाए तो एक्सपर्ट का डिसीजन कुछ और होगा, एक्सपर्ट नहीं उसका डिसीजन कुछ और होगा। ये फर्क क्यों है? इसलिए क्योंकि हर बंदे का लेवल फर्क है, वो लिमिटेड है, उसके रिसोर्सेज लिमिट है। मतलब ये कि वो मैं जितना बेहतरीन से बेहतरीन फैसला करूं मुझे ये कदम नहीं पता कि आगे क्या होगा, महीने बाद क्या होगा, साल बाद। कोई शादी होती है तो इंसान को क्या पता होता आगे क्या होगा कि क्या मेरी उस बीवी से बनेगी, बीवी को क्या पता शौहर से बनेगी, औलाद कैसी होगी क्या होगी, कुछ पता नहीं। वो तो एक जाहिरी एस्पेक्ट पे जाहिरी कुछ अनासर दे के फैसला कर लेते। अल्लाह ताला को किफाल की कोई लिमिटेशन नहीं है। इंसान के पास दो एक दो बंदों का झगड़ा आ जाए वो भी सॉल्व कर सकता है, कई बार मसला पेश आया था कैसे इसको हल निकाल, एक ये कह रहा है ये कह रहा है, इनमें कौन सच है कौन झूठ है, किसका राइट है किसका राइट नहीं है, कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पूरी तखलीकात, कोई टाइम नहीं है कोई स्पेस नहीं, हर चीज का पता अल्लाह ताला को। अब जिसका इतना ब्रॉड विजन हो सारी बात, उसके डिसीजन कुछ होंगे जो बिल्कुल उस दूसरे को समझ नहीं आएंगे। मिसाल के तौर डॉक्टर कोई डिसीजन लेते हैं जो लेमैन को बिल्कुल समझ नहीं आता ये कैसे फैसला कर, डॉक्टर कहता है हाथ काट दो, लेमैन कहते क्यों काट दो, उसकी जान बचानी है, उसको तो नहीं समझ में आएगी, वो उस वक्त सरेंडर करता है कि ठीक है इसको पता हो काटना चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी बड़ी विजन हो, इतनी ब्रॉड उसके पर्सपेक्टिव हो, इतना उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो, तो एक जिसके पास वही कुछ नहीं वो कैसे उसके समझ सकता बात। अल्लाह ताला के सामने सारे जहान, अल्लाह ताला के सामने क्रिएशन, हमारे सामने इंसान है, अल्लाह ताला के जिन भी हैं फरिश्ते भी हैं और इतनी मखलूकात हैं, ये चुनटियाँ ये सारे नबातात जबदात उनके भी अल्लाह ताला पालने वाले, उनके भी फैसले करने हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला टाइम का कोई मसला नहीं, फ्यूचर में देख रहे हैं 20 साल 30 साल 40 साल 100 साल बाद ये होगा तो अब क्या करना है, उसके लिए आज एक शख्स को पैदा करना है उस हालात को ठीक करने के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा है उनको अल्लाह ताला ने मिस्र के हालात ठीक करने के लिए पैदा, मिस्र के हालात पैदा वो हो रहे हैं फलस्तीन में, मिस्र के हालात ठीक करने, और कैसे मिस्र पहुंचाया जा रहा है कुओं के जरिए, ये तकदीर, ये अल्लाह के फैसले होते हैं कि कैसे ये इस वक्त उस वक्त ठीक करने के लिए मैंने कैसे वहां पर जाना। तो फ्यूचर अल्लाह के में नजर में, हर चीज नजर में, दो शख्स दुआएं मांगते हैं, एक शख्स एक दुआ मांगता है, दूसरे दूसरे दूसरी दुआ मांगता है, एक कहता है बारिश हो, एक कहता बारिश ना हो, किसकी दुआ कबूल हो, किसका किसका हल हो मसले, दोनों के अपने मसले। यानी इतनी ज्यादा बातें हैं, अब फैसला अल्लाह ताला ने करना होता है कि ये करना। यानी इस दिन जितना सोचते रहेंगे समझ आ जाएगी बात की मेरे मेरी मेरी रेंज से बात बात है, बाहर है, कि मैं इस पे कोई फैसले नहीं कर सकता। ये समझ आ जाएगी कि जब मैं फैसले नहीं कर सकता तो अब दो राय आएंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में, कि अल्लाह ताला ने जो फैसला किया वो किस बेसिस पे किया। तीन ऑप्शन हो सकते, एक ये है कि जुल्म किया अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह, कि अल्लाह ताला को ये नहीं करना चाहिए, ये जुल्म है, ये बच्चा फौत हो गया, ये एक पालने वाला घर था वही फौत हो गया, ये पाहिज पैदा हो गया, या ये इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, ये तो जुल्म। एक ऑप्शन ये, दूसरी ऑप्शन ये है कि अदल के फैसले होते हैं कि उस जैसा किया वैसा भरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इस बेसिस पे फैसले शायद अल्लाह ताला करते। तीसरी ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला शायद रहम के बेसिस पे फैसले करते हों, कि रहमत होती हो, यानी कि जहां भी फैसला करना हो वहां रहम करते। ये तीन मेरे पास ऑप्शन मौजूद है इस चीज को समझने के। तो अल्लाह ताला कुरान में ये फरमा देते हैं कि मा युबद्दल القول لدي وما انا بظلام للعبيد, कि मैं वमा अना बेजल्लाम लिल्लबी, मैं जुल्म नहीं करता इंसान। ये अल्लाह ताला ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया, जो कि अकली हमें भी समझ आना चाहिए कि जो जो रहमान और रहीम अपने आप को करार देती है हर जगह, रहमान और रहीम और एक मोस्ट पॉपुलर सूरह रहमान, जो हर जगह रहमत को आगे रखती हो, वो कैसे जुल्म कर सकती, जो इंसानों को रोकती है जुल्म ना करो, जो ज़रा जुल्म हो जाए, जरा सा जुल्म, ज्यादा नहीं। यानी कि इतनी प्रिसाइजली अल्लाह ताला नापते हैं, उसमें हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने एक्यूरेसी प्रिसिजन बहुत ज्यादा है। हदीस पाक में आता है एक शख्स क़यामत के दिन पेश होगा, घुटनों के दर पर बैठे होंगे, दो शख्स पेश होंगे, एक ने दूसरे पर जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगी। अब हमारे दिन में ये ना कि बहुत बड़ी कोई ज्यादती हो, वो ये छोटी छोटी, उसने एक को बुरा कह दिया, किसी ने गिबत कर दी, किसी ने ये कर दिया, गुस्से में बात कर ली, और सब घरेलू हालात में ये बहुत मुहतात होना चाहिए मियां बीवी को। तो अब ज्यादती हो गई तो वहां पर दोनों शख्स पेश होंगे, अल्लाह के सामने मुकदमा पेश होगा। अब वो कहेगा ज्यादती जिसको हुई तो कहेगा क्या चाहता है, अल्लाह ताला इसकी नेकियां मुझे दे दे, नेकियां दे देंगे, जुल्म बराबर हिसाब हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ डिसीजन है, तो क्या करें, उससे पूछेंगे अब क्या करें, कहेंगे अल्लाह ताला मेरे गुनाह इस पर डाल, इसके बाद और निकिया नहीं है, वो तो खत्म होगी, अब मेरे गुनाह इस पर डाल, अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, बैलेंस तो करना है, जुल्म नहीं करना। अब वहां पे फिर अल्लाह ताला सिफारिश करेंगे कि ये शख्स ऊपर देख, वो देखिए जन्नत, अल्लाह ताला इतनी बड़ी जन्नत, कहा पूछेंगे ये किसकी है, कहा किसी नबी की होगी, किसी वली की होगी, तक की होगी, अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हें भी मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, इसको माफ। इस शख्स को माफ, तो कहेंगे उसने उसने इतनी शौक होगा जन्नत को, कहेगा अल्लाह ताला मैंने इसको माफ किया, तो अल्लाह ताला कहेंगे जाओ अपने भाई का हाथ पकड़ो, दोनों इसमें दाखिल। तो उस वाक्य को जिक्र करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, और ये हदीस का बैकग्राउंड यही है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, तो साहब ने पूछा कि क्या आप किस चीज़ से मुस्कुरा रहे हैं, फिर उन्होंने पूरी बात फिक्र कि ये तरह अल्लाह ताला फैसले करेंगे, और कहा कि वो सुलह कराएंगे, तुम भी आपस में सुलह करो, किया करो दुनिया के। तो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते, ये चीज अल्लाह ताला ने बताई। और दूसरा असूल अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में जिक्र कर दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब मैं ये सोचूं कि इस शख्स के साथ जो हो रहा है ये इससे ज्यादती है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा में किसी से के ऊपर उसकी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, उसकी वसत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मैं बता रहा हूं, मैं करता हूं ना, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं डालता, जब उससे ज्यादा बोझ भी नहीं डालते, इस हवाले से भी जुल्म नहीं है, वैसे ही अल्लाह ने कहा मैं जुल्म नहीं करता, तो किसी इस हवाले से जुल्म का पहलू तो निकल गया। तो जुल्म अल्लाह तआला कभी नहीं करते। अब फैसले दो ही तरह से अल्लाह करते हैं, या अदल पे करते हैं या रहमत पे। तो अगर हम जिंदा हैं तो रहमत पे हैं, जहां हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में जिक्र करते हैं अजाब आ गए, कौमें पलटी गई, उल्टी गई, तबाह बर्बाद होंगी, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं जुल्म नहीं किया, उनके अमाल ही ऐसे। तो दो ही तरीकों से अल्लाह ताला फैसले अदल या रहमत के अपने आप जुल्म नहीं करते। तो ये चीज इंसान, हाँ ये समझ लेना चाहिए कि मैं ही समझ से बाहर है। तीसरी चीज अल्लाह ताला ने ये कही कि मैं हिकमत वाली जात हूं, मैं हकीम हूं, इल्म व हिकमत है, अलीम व हकीम। इल्म भी मेरा है कि क्या करना है कब करना है, खबीर भी हूं, अलीम व खबीर भी कहा, अलीम व हकीम भी कहा। हिकमत पे बेस करता हूँ, इल्म पे बेस करता हूँ, खबर पे बेस करता हूँ। मुझे पता है ये बंदा उठा सकता है, मैं उसको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में मल्टीपल यानी कि कैपेबिलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बॉल लाए, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ अब कोई ऐसा एग्जाम प्लान किया जाए कि जी उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उस पेपर को, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता कम है, लेकिन अगर ऐसा समझा जाए तो ये इसी तरह दुनिया को समझना चाहिए कि जिसके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा है उसको उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक पेपर दे दिया जाता है। इसका क्वेश्चन होता है, उसमें ये मुश्किल, इसका क्या आंसर है, इसमें खुशी मिल रही है, इसका क्या आंसर है, शुक्र करना है, सबर करना। हर शख्स का पेपर फर्क है, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक। एग्जामिनर को पता है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसको पेपर दिया जा रहा है और वो हल कर रहा है। और हमें एक अब अकलमंद जिसको ये सारा सारी फिलॉसफी सारा फिनोमेना समझ में आ जाए, वो कभी दूसरे का पेपर नहीं देखेगा, उसको क्या आया है, मुझे क्यों नहीं आया भाई। वो इम्तहान में ये नहीं क्राइटेरिया, हर एक का क्राइटेरिया फर्क है। वो उसको उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक आंसर करने पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे, आपको आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक जो क्वेश्चन आया है उस पर आंसर करने पर नहीं देखे। इसलिए दूसरे में नजर भी ना रखो, ऑब्जेक्ट भी ना करो, अपने काम से काम रखो। इंसान दुनिया में ये देखता है कि उसको ये क्यों मिल गया, उसको ये क्यों मिल गया, उसको ये मिल गया, उसको ये क्यों छिन गया, उसको क्यों छिन गया। दूसरों के फैसले करता फिर है भाई, जो आपके साथ मामला है वो करे, उसमें इन्वॉल्व हो, उसका आंसर करें। ये सारा टाइम पीरियड उसका है, दूसरों में बोले वेस्ट हो जाएगा टाइम। और उस फॉर एग्जाम्पल एक आलिम दीन है, एक आलिम है, अब उससे जो गुनाह होगा उसकी उसके क्राइटेरिया पे उसके फैसला किया जाएगा। एक आम शख्स अगर उससे गुनाह होगा उसके उसके मुताबिक फैसला किया जाए। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हुआ, पाक दौर देखा, उसके अमल, और एक शख्स अब जो पैदा हो रहा है उसके अमल, उनके हालात के मुताबिक उनके फैसले हो। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक में मेंशन किया कि बाद वाले दौर में कोई दसवें दीन के दसवें हिस्से में अमल करेगा तो वो उसके लिए काफी हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसके हालात ऐसे, दौर इतना दूर, इतना माहौल खराब, थोड़ी सी एफर्ट भी अल्लाह उसकी कबूल कर ले। लेकिन उस दौर में जरा सी भी तो मुनाफिकीन में दाखिल हो गया, कुफार में दाखिल, कोई सोच सकता है नमाज ना पढ़, नमाज नहीं पढ़ा फौरन कुफार में दाखिल। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्यों कुछ समझ में आती है बातें। जैसे एक क्यों का जवाब ये भी कुरान पाक में अल्लाह ने दिया कि ज़ाहर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी अन्नास लियुज़ीकहुम बाज़ अल्लज़ी यअमलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि जमीन तरी और खुश्की में जो फसाद है वो इंसान के अमल की वजह से। तो अगर कोई तुम्हें कोई नजर आ रही है बुराई तो समझो कि मेरी अमल की वजह से, मैंने गुनाह किया उसका रिजल्ट आ रहा है। अल्लाह ताला ने गुनाहों के रिजल्ट पहले बताए हुए, गुनाह करोगे कोई ना कोई पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं, क्यों करता है। तो अब पकड़ आ गई तो तुम्हारे गुनाहों का रिजल्ट है, किसी के साथ कोई बुरा हुआ तो मेरे गुनाहों का रिजल्ट है। इसीलिए नेक लोग जो होते हैं जिनको ये मार्फत, इससे मार्फत ये सारी बातें मार्फत की, अल्लाह ताला की पहचान की है, हर एक लेवल फर्क है, जिसको हासिल हो जाती है वो हर दुनिया में आने वाली मुसीबत को अपने से रिलेट कर देता है कि मेरी वजह से आ रहा है। उसे इसलिए वाकयात किताबों में लिखे हैं, ये कश्ती जा रही थी तूफान आ गया तो साहिल परेशान, किसी की जेब में आया कि लगता है हमें से कोई बहुत गुनहगार बैठे हैं उसकी वजह से अजाब आ रहे। तो जो सबसे नेक बुजुर्ग उन्हें कहा जो शख्स गुनहगार तुम्हें पता है कि तुम उसने भी गुनाह बड़े बड़े किए हैं तो वो किसी से जाए, क्यों सबको इस जान को मुसीबत में डाला गया। तो जो सबसे नेक बुजाहिर थे बुजुर्ग थे वो खड़े हो गए, मैं हूँ सारे खराब। तो ये کیوں کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے فنامینا یہی ہے, گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو مجھے دوسروں کو بدگمانی کیوں کروں گا, اس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اس نے کیا, مجھے اپنوں کا تو پتہ ہے میں نے تو کیے ہیں, تو میں اپنے سے لیٹ کروں گا میری وجہ سے ہو رہا ہے, میں کاز ہوں سب برائی کا, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا ساری برائی ٹھیک ہو جائے. تو یہ بھی ایک ریزن اللہ, تو کچھ ریزنس اللہ نے بتائی اور کچھ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو ڈھک دیا کہ یہ اس کے اندر ہے, یعنی کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, رولز میں بتا دیتا ہوں, ظلم نہیں کرتا, حکمت سے کام لیتا ہوں اور میرے پاس علم ہے اس بیسس پہ کرتا ہوں, کسی پہ بہت زیادہ نہیں ڈالتا. تو یہ ذہن میں رکھو, اس لیے اس پہ زیادہ نہ سوچا کرو یہ کیوں ہوا, ورنہ ہر کیوں کا انسان جواب ہی نہیں دے سکتا. فار ایگزامپل بارش کیوں ہوئی, پہلے کیوں نہیں ہوئی, یہ یہاں پہ پہاڑ ہے یا پہاڑ کیوں ہے, یہاں نہ ہوتا تو کیا, مطلب کہ یہ یوز لیس سوال, یہ ہر کیوں اتنے کیوں کہ کیسے آنسر کیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا, لا یوسلو عما یفعلو وہم یوسلو, کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کیوں کیا, اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا کیوں کیا, ہر شخص کو آنسربل ہے اپنے ڈیڈ کا. اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھے کیوں کر دیا, یہ کفر کفیہ جملہ ہے, علماء نے اس کی لکھا ہے کہ کفریہ جملوں کے اندر اس کو شامل کیا کہ انسان کہتے کیوں کیا, کہ آبجیکشن اللہ پہ, اللہ کی حکمت پہ, اللہ کے علم پہ, اللہ کی علیم و خبیر ہونے پہ. تو کبھی یہ نہ کہے کیوں ہوا, مثال کے طور پہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا, کبھی اس وہاں سے کیوں ہو گیا, اس کے جو جہاں سے آنسر کرنا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں صبر اس کا آنسر ہے, یہ کیوں آبجیکشن آنسر نہیں ہے. تو کبھی یہ نہ کہے کیوں ہوا, ہاں اللہ کی مرضی تھی, ہو گیا صبر, اور اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہو کے بھی ڈسکس کریں گے, کیوں کا زبان سے لفظ نکال دیں. ہاں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ وہ بتا دیا کہ ہوتا ہے, انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں باتیں. اب بات لمبی ہو رہی ہے, 10 منٹ 5 منٹ ہو تو سائز کر دوں بات, جی تاکہ وہ بیک گراؤنڈ بندہ بنانا پڑتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات کی, لیکن یہاں پہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ انسانی عقلوں کو الجھا نہیں رہنے دیا, سلجھایا کیسے, قرآن پاک میں اس کو خود ڈسکرائب کر دیا کہ تم لوگ صرف انوکھے نہیں ہو کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی تقدیر کی یا فیصلوں کی, یہ کیوں ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, یہ علم ہے ہی ایسا کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا, انسانی استعداد سے باہر. اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ نہیں آتی تو بڑی باتیں کہاں سے سمجھ میں آئیں. اور اگزامپل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی بات بتا دی, جب نبی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو تم کیسے سمجھ سکتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, کہ نبی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تم کیسے سمجھ سکتے. تو اللہ رب العزت نے کیسے وہ ذکر کیا, وہ واقعہ اس کے ایڈیٹس پڑھتے ہیں کہ بس قال موسیٰ نے فتح ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو میں نہ ہٹوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا, یہ چلتا ہی جاؤں گا زمانوں تک. تو ہوا یوں تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے نے تقریر کی اور یہ کہہ دیا, تقریر کے بعد کسی نے کہا کیا عمدہ تقریر ہے, کیا آپ سے زیادہ علم والا ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے, کیونکہ بات تو صحیح ہے وقت نبی کے بعد سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میسج دیا اور ہم سب کو بھی میسج دیا کہ یہ نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے علم ہے, کیونکہ ان کی بات ان کے سنیریو میں ٹھیک تھی غلط نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کئی بات نبیوں کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے اور اولیاء کے ذریعے عوام کی تربیت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے زیادہ علم والا ہے, کہا اچھا کون, کہا کہ فلاں شخص فلاں جگہ جائیں جہاں دو دریا آپس سے ملتے ہیں, ایک جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں, وہاں جائیں وہاں وہ شخص بیٹھا ہوا اس سے ملے گا, اس کے بعد سے علم آتا. اب نبی کو کیا علم کی پیاس ہوگی, کہ علم سے مراد ہے جو اللہ کے قریب کرے, تو اللہ کا کوئی ایسی معرفت ایسا علم ایسی بھی کوئی پہچان ہے جو مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہونی چاہیے. ایک پیاس لگ گئی, اور جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو ساتھ دیا, شمعون علیہ السلام تھے ان کی خدمت میں, ان کو ساتھ دیا, کہا چلو سامان تیار کیا چل پڑے, اور کہا کہ میں جب تک وہ جگہ نہیں آئے گی میں چلتا رہوں گا, یاد میں چلتا ہی رہوں گا, یہ بس ایک ڈیڈیکیشن تھی کہ مجھے بس علم حاصل کرنا ہے. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, کہ جب وہ وہاں پہنچے جب آگے چلے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو کہ لاؤ ہمارے پاس کھانا, ہم نے سفر میں تکلف اور تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں تھکن ہو رہی ہے, تو کھانا لے کے آؤ. ان خادم سے کہا قال اریت اذا وینا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان شيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. تو بولے جو خادم تھا شمول علیہ السلام کہ وہ دیکھا آپ نے کہ جب ہم نے جگہ وہاں ٹھہرے تھے ایک جگہ پہ اس پتھر کے پاس, تو میں مچھلی کو وہی بھول گیا اور یہ مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ اس کا ذکر کروں آپ سے, اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں ایک عجیب طریقے سے. مطلب کہ مچھلی تھی ان کے سامان کے اندر کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی, تو جب وہ ایک جگہ ٹھہرے تو مچھلی رندہ ہوئی اور چھلانگ مار کے وہاں باہر نکل گئی. تو انہوں نے دیکھا ہی ہوا لیکن بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا کہ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا. تو ابو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہم قصصا, کہا کہ یہی ہے وہ جگہ جہاں ہم نے جانا تھا, یہ بھی ایک نشانی تھی, یہ مچھلی زندہ ہو کے جائے. پھر وہ واپس اس طرف چل پڑے کہ جہاں پہ وہ مچھلی نکلی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے وہ خضر علیہ السلام کو پایا. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, پھر پایا وہاں ایک بندے کو میرے بندوں میں سے, ہمارے بندوں میں سے, جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ان کو اپنے پاس سے علم سکھایا. اب یہ واقعہ جب آئے گا سورہ کہف میں انشاءاللہ, تو وہاں اس کی تفصیل ذکر ہوگی. ایک بہت ہی خوبصورت اس کے اندر اتنے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا, ہے کون جس کو نبی سے بھی زیادہ علم ہے, اللہ تعالیٰ کہ اب دم میں نہیں مانے میرے بندوں میں سے ایک بندہ. یہ ابدیت ایک پیک ہوتی ہے انسانیت, نیک بندے کو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں. رحمت میں نہیں, اس کے پاس تھا کیا, میری طرف سے رحمت تھی اور رحمت سے اس کو ملا کیا تھا علم. یہ رحمت و علم جڑی ہوئی باتیں, ہم یہ جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ڈسکشن ہماری سوچ سے اوپر جا سکتی ہے, ہمارے اوپر سے گزر سکتی ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ کی رحمت اور بات سمجھنے آنے والی باتیں سمجھ آ جاتی, ہم رحمت پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے رحمت دی تھی, اپنی پاس سے اس کو ایک علم دیا تھا. تو انہوں نے کہا قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں کہ جو آپ کو علم سکھایا گیا ہے اس سے میں بھی فائدہ لوں, مفہوم ہے نا آیات کا. تو انہوں نے کہا قال انك لن تستطيع معي صبرا, انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب ان کو بھی, حضرت علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یہ علم انسانی ادراک سے بلند ہے, اس کی فہم سے بلند ہے, اس کی سمجھ سے بلند ہے, یعنی کہ تقدیر کا, ان کے پاس تقدیر ہے. ان تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صبر کر سکیں گے, نہیں آپ کی مطلب کہ اس کو حصول ممکن نہیں ہوگا. وہ کئی فتصبر والا معلوم تفید بہی خبرا, اور آپ کیسے اس پہ صبر کریں گے جب آپ کو خبر ہی نہیں. تو یہ میسج ہمیں, یہ کیوں وہ کیسے نکالیں کہ کیسے ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہمیں اس چیز کو پورا خبر ہی نہیں ہے بات کی, کہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں, کتنی پرسپیکٹس میں ہو رہے ہیں, کتنی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہو رہے ہیں, تو کیسے میں کیسے یعنی کہ اس کو سمجھ سکتا ہوں, تو کیا نتیجہ نکلے گا ہر چیز میں, کیوں یہ کیوں وہ کیوں, جیسا آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا, جیسے کیوں ہے. تو یہ کیوں کی وجہ لا علمی ہے, بے خبری ہے انسان کی. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لك امرا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, تو انہوں نے کہا کہ حضرت اسلام نے اگر آپ میری پیروی کرنی چاہتے ہیں تو بس ایک شرط, سوال نہیں کرنا, یہاں تک کہ میں خود نہ بتا دوں, میں بتاؤں گا لیکن سوال آپ نے نہیں کرنا. تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ٹھیک ہے اور چل پڑے. فن تلقا, دونوں چل پڑے. حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال خرقتها لتبرك اهلها لقد جئت شيئا امرا, یہاں تک کہ وہ دونوں چلے, تفصیل کتابوں میں ملتی ہے, دونوں چل پڑے. اب دو سات خادم ہیں, دو وہ ہیں, ساتھ جا رہے ہیں, آگے دریا آ گیا, کشتی گزاری بات ہے کشتی. اب یہ بھی دیکھیں کہ نیک سے نیک بندے خضر اعظم موسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں وہ اسباب کے اندر ایسے ہوتے ہیں لیکن نظر کہاں ہوتی ہے, اسباب سے پیچھے, پتلیوں سے پیچھے اللہ پہ ہوتی ہے, لیکن سامنے وہی شخص ہوتے ہیں. اب وہ سامنے کشتی کے انتظار میں کھڑے, کشتی آئی بیٹھ گئے, اور راستے میں چلتے رہتے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ کیا بات ہے, کشتی اچھی بڑی جا رہی ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہا کالا خرکتا حل تکرے کا حل, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں ڈوب جائے کشتی, لکھت جی اتنا چاہیے نہیں ملا, ایک بہت آپ نے بھاری عمل کر دیا. تو انہوں نے آگے جواب دیا, کالا علم اقل ان کلن تستیا مائی صبر, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میں سے صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام چونک گئے کہ اچھا یہ وہ علم ہے جسے کوسچن نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا القال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا, کہا مجھ کو نہ پکڑے میری بھول پر اور مت ڈالے مجھ پر میرا کام مشکل. تو انہیں فوراً فکر ہوئی کہ مجھے اتنی اسٹوڈنٹ یعنی کہ اب یعنی میں اسٹوڈنٹ جو ہوں ان کا یہ نکال ہی نہ دیں اس اسٹوڈنٹشپ سے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے مشکل میں نہ ڈالیں کہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں بھول گیا. فن طلاق, پھر آگے چلے, حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. پھر دونوں چلے یہاں تک جب ایک لڑکا ملا, یعنی کہ دریا عبور ہوا, سامنے بچے کھیل رہے تھے, ایک لڑکا بچہ کھڑا ہوا تھا, خضر علیہ السلام اس کو پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا, اس کو قتل کر دیا. وہ حیران, وقت نبی دیکھے جو کہ عدل قائم کرنے آئے, اللہ کی شریعت کو قائم کرنے آئے, وہ دیکھے ایک شخص اٹھا کے ایک کو قتل کر دیا. انہوں نے فوراً آبجیکشن کیا, قتل تو نفس زکیہ, ایک پاک صاف جس نے کسی کو قتل نہیں کیا, آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. اب یہاں انہوں نے کہا لقد یہ تشیع نکرا, یہ آپ نے منکر کیا ہے, گناہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہی قال علم اقول لك انك لن تستطيع ما يصبر, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے. یہاں پہ تھوڑی سختی تھی, پہلی والی آیت میں تھا قال علم اقول انك لن تستطيع, اقول انك, یہاں پہ کیا قال علم اقول لك, میں نے آپ ہی سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے, کیا تھوڑی سختی ہے, میں کہا تھا نہیں کریں گے وہاں, اب تھوڑی اور سختی ہے, میں نے آپ ہی سے تو کہا تھا. قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا, کہ ٹھیک ہے اگر اب میں سوال کروں تو پھر ہماری یہ ختم, یعنی کہ یہ سارا جو میں نے زیادہ تھا وہ منقطع, آپ ادھر پہ پہنچ چکے ہیں, یعنی آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طے کیا تھا پہلے اور میں اس کے خلاف ہوں, تو آپ ادھر کو پہنچ چکے ہیں. تو سمجھ گئے اس چیز کو کہ یہ میرے علم شاید میری ادراک سے باہر ہے, میری گیپ سے باہر ہے. تو پھر ون طلقہ, پھر آگے چلے, حتی اذا اتیا اہل قریت نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. دونوں چلے یہاں تک کہ آگے بستی میں پہنچے, آگے ایک اور بستی تھی. اب پھر دیکھیں وہی بندگی, دونوں کو بھوک لگ رہی, ہم بستی والے سے کہتے کوئی کھانا دے دو. بستی والے پہلے کشتی والے جانتے تھے سوار کر لیا تھا, ادھر بستی والے جانتے ہیں کہ نہیں دیتے, بھوکے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دیوار ہے وہ گر رہی ہے, کچی دیواریں ہوتی تھیں, انہوں نے جلدی سے جائیے ٹھیک کر دی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, مطلب کہ آپ بھوک لگ رہی ہے, آپ ان سے کہتے ہیں کس کی دیوار ہے, اس کی مزدوری لیتے پیسے لیتے ہیں, ہم کچھ کھانا ہی کھا لیتے, تو ہم اس کا اجر لے لیں کہ کھانا کھاتے جو بھوک لگ رہی. قال هذا فراق بيني وبينك, انہوں نے کہا کہ یہ بس جدائی ہے میرے اور تم میں, لیکن جدائی کے بعد میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان باتوں کی خبر جو آپ کو نہیں صبر نہیں ہوا جس پہ. پہلی چیز, اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینہ غصبا, کہ وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی جو کہ سمندر میں کام کرتے تھے, تو میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں, سوراخ کر دوں. کیوں کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ ہر جو سالم کشتی تھی اس کو چھین لیتا تھا مزدوروں سے, تو میں نے ایپ ڈال دیا تاکہ وہ چھینے نہ. آگے فیوچر یہ انسان کو پتہ ہی نہیں, وہ فیصلے آبجیکٹ اپ کرتا کیوں ہوا, آگے کیا ہے, یہ انہوں نے آگے تھا, تمہیں آپ کو نہیں پتا, میں نے آگے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا, فرد تو نہیں وہاں میں نے ایپ ڈال دیا. وہ امن غلام فقان ابا واہ مومن فقشین انجور ہے کام تو غیالم کفرا, اور جو بچہ تھا ان کے والدین نیک تھے, تو میں ہم ڈرے کہ وہ ان کو تغیانی یعنی کہ گمراہی، گناہ اور کفر میں نہ مبتلا کر دیں. یعنی وہ اتنا انہیں محبوب تھا والدین کو اور وہ مومن تھے، تو ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کو اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بڑا ہو کے محبت کی وجہ سے ان کو بھی اپنے پیچھے نہ چلا لے، کفر میں نہ لے جائے. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دے اس بچے کو ایک کسی اور سے جو کہ پاکی میں اور قربت میں رحمت میں زیادہ اچھا. اب یہ اتنی براڈ ڈیسیژن، یعنی کہ آگے اس نے کفر میں مبتلا کرنا ہے، ابھی فیصلہ کر کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے ایک اور بچہ دینے کی پلاننگ ہو رہی ہے جو کہ اس سے بہتر ہو ہر لحاظ. اتنی زیادہ پلاننگ. اور پھر تیسرا کہا کہ ام الجدار فقان الغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز اللہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرج کنزہما. اور جو تیسری چیز آپ نے دیکھی کہ وہ دیوار تھی، وہ دو غلام یعنی بچوں کی تھی، یتیم بچوں کی، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا. تو پہلے بینکس تو نہیں ہوتے تھے، تو دبا دیتے تھے زمین میں، تو نشانی کے طور پہ دیوار کھڑی تھی کہ اس کے نیچے خزانہ ہے. اور ان کے والد نیک تھے جو فوت ہو چکے ہیں یتیم، وہ نیک تھے. ان نیکی کا اثر اللہ نے شو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرو، اس خزانے کو چھپا رہے تاکہ بڑے ہوں تو اس کو استعمال کریں. یہ پلاننگ تھی، تو اس لیے میں نے سارا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ کرو، میں نے دوار کو سیدھا کر دیا. یہ سارا کہنے کے بعد انہوں نے کہا رحمت من رب، یہ سب رحمت تھی تمہارے رب کی، یہ ظلم نہیں تھا، یہ عدل بھی نہیں تھا، یہ سب رحمت تھی. وہ بچہ قتل ہوا یہ رحمت تھی، وہ کشتی میں سوراخ ہوا یہ رحمت تھی، آپ کو یہ سارے عیب نظر آ رہے تھے، یہ سب رحمت تھی. اور اس دیوار کو سیدھا کرنا اور نجات نہ لینا یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ ظلم نہیں تھا، یہ عدل بھی نہیں تھا. یہ رحمت من ربک فما فعلتہ عن امری، یہ میں نے خود کچھ بھی نہیں کیا، فاعل حقیقی اللہ تھا، اللہ کہہ رہے تھے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہم باتوں کا علم جو آپ کو نہیں سمجھا. اب اتنی یہ واقعہ پورا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا کہ یہ فیصلہ پیچھے ہوتی ہے حکمت، پورا واقعہ ذکر کیا اتنی زیادہ آئے. اب یہ سوچے انسان، اب نارمل سنیری میں آ کے سوچے کہ سارے واقعات ہو رہے ہوں گے، ہمارے گیٹ ہوتے ہیں. اب وہ جب بچہ فوت ہوا، والدین روئے ہوں گے، ماں پہ کیا گزری ہوگی، باپ پہ کیا گزری ہوگی، اب ان کے نزدیک ہوگا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لوگ آبجیکٹ کر دیتے کیوں ہوا، کیوں کہاں سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، میں نے اس سے بہتر تمہیں اولاد دینی. وہ بچے وہ کشتی والے آبجیکٹ کیا، مفت میں تمہیں سوار کیا، سوار کر رہے کیوں کر رہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کروا رہے ہیں؟ اگر ہم فائل حقیقی اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ کروا رہے ہیں؟ کیوں کہاں سے اللہ تعالیٰ دینا، تمہیں اس لیے کروا رہے ہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے. تو بظاہر ظلم، وہ اصل ایکچوئل رحمت تھی. بظاہر رحمت یعنی کہ انہوں نے حیرت اس بات پہ تھی کہ مفت کشتی میں سوار کرنے والوں پہ ظلم اور کھانا نہ دینے والے پہ رحمت، سمجھ سے باہر. وہ ظلم کر رہے کھانا ہی دے رہے، ان پہ رحمت کا معاملہ ہے، وہ بغیر پیسوں میں کشتی پہ سوار کر رہے تھے، ان کی کشتی پہ سوار کرتی، یہ تو سمجھ باہر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری سمجھ سے واقعی باہر ہے، کیونکہ میرے ڈیفینس پہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو تمہاری ہے ہی نہیں، اکویژن میں ہے ہی نہیں. تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات، یہ کیوں کا آنسر ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ کے اندر ایک چیز ہے کہ دعا، تدبیر، جو ہم پلاننگز کرتے ہیں وہ کیا لائے، کہاں لائے کرتے ہیں، اس پرسپیکٹو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور پھر اس ساروں کو پھر آپ اپنے کانسیپٹ کو مرچ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ اپنی معرفت کھول دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک آپ کی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام ساتھیں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یا اللہ پاک تقدیر ہے، تقدیر حق ہے. یا اللہ پاک ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ فائدے حقیقی ہیں، اب ہر چیز کو کرنے والی ذات ہیں. या अल्लाह पाक महज अपने लुत्फों के नाम से या अल्लाह पाक ईमान और ये हमारे जो अकीदा है इसको हमारा यकीन बना दे, या अल्लाह पाक इसको हमारी हमें समझा दे ताकि या अल्लाह पाक हम तेरे फैसलों पे राजी हो जाएं, हमें मुकाम रजा मिल जाए, हमें मुकाम तवक्कुल मिल जाए, हमें या अल्लाह पाक मुकाम एहसान मिल जाए, हम हर चीज़ को तेरी तरफ से होता हुआ देखें। या अल्लाह पाक महज अपने लुत्फ करम से ये अपने इल्म जो आपके ख़ास इल्म है ये हमें नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक ये ख़ास आपका ये ताल्लुक है वो हमें नसीब फरमा दीजिए, जो आपका ये ख़ास या अल्लाह पाक इदराक है हमें वो नसीब फरमा दीजिए। हम दुनिया से इंप्रेस होने के बजाय या अल्लाह पाक आप पे नज़र करें, आपसे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करें, आप पे तवक्कुल करने की कोशिश करें, आपसे राजी रहने की कोशिश करें, सब्र की सिफत हमारे अंदर आ जाए, शुक्र की सिफत अंदर आ जाए, खुशी में हम इतराए ना गम में हम ज्यादा गमजदा ना हो। या अल्लाह पाक ये सारी नेमतें हमें नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक आज हमने कोशिश की कि या अल्लाह पाक इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें, लेकिन तेरे चाहने के बगैर कुछ नहीं होगा, तेरे एहसान तेरी रहमत के बगैर कुछ नहीं होगा। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी सही और कोशिश को कबूल करके या अल्लाह पाक ये हमें अपनी तकदीर कायम नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक ये सारा तवक्कुल कायम नसीब फरमा दे, अपनी ज़ात कायम नसीब फरमा दे, अपनी ज़ात की मार्फत नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे सीनों को मुतमईन कर दे। या अल्लाह पाक हम अहकाम पे भी मुतमईन हो जाएं, हालात पे भी मुतमईन हो जाएं, हम समझ जाएं कि जो अहकाम आते हैं उसके पीछे भी बहुत सारी हिकमतें होती हैं, जो हालात आते हैं उसके पीछे भी बहुत सारी हिकमतें होती हैं। अल्लाह हमें अपने से राजी कर ले और हमसे तू राजी हो जा। या अल्लाह पाक हमें मुकाम रजा और या अल्लाह पाक ये जो मुकाम है या अल्लाह पाक एक ताल्लुक वाला मुकाम होता है उस तक हमें पहुंचा दे। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से जो हमसे गुनाह हो गए उनको माफ़ कर दे, वो छोटे थे या बड़े थे, करके याद है ये करके भूल गए, महज अपने लुत्फ़ करम से या अल्लाह सबको माफ़ कर दे। या अल्लाह पाक जो गुनाह जहाँ जिन जगहों पे किए उन जगहों को भुला दे, जिन या अल्लाह पाक फरिश्तों ने लिखे या अल्लाह पाक उनको भुला दे, नाम अमाल से उनको ख़त्म कर दे। या अल्लाह पाक हमारी याददाश्त से भी उनको ख़त्म कर दे। या अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों में जो अल्लाह पाक हमें सहब्स हुए, या अल्लाह पाक आपकी तौफीक से हमने उस पर सब्र किया या अल्लाह पाक, लेकिन अब याद आते हैं तो या अल्लाह पाक गम होता है, तकलीफ होती है। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे जहन से या अल्लाह पाक उनसे महब कर दे, हमें मुतमिन जिंदगी नसीब फरमा, इत्मीनान वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक सुकून और राहत वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक अगर हमारा कोई गुनाह वजह बना हुआ है कि या अल्लाह पाक हम गम में मुब्तला हैं, या अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन गुनाहों को माफ़ करके या अल्लाह पाक हमें गम से आज़ाद जिंदगी नसीब फरमा। हमें या अल्लाह पाक हकीकी गम आखिरत का गम नसीब फरमा, हकीकी फिक्र आखिरत की फिक्र नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हकीकी ताल्लुक अपना ताल्लुक नसीब फरमा। या अल्लाह हकीकी मोहब्बत अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, हकीकी खौफ अपना खौफ नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मखलूक के खौफ मोहब्बत और ताल्लुकों से हमारी जान छुड़ा दे। या अल्लाह पाक बड़ी बड़ी नेमतें मांग रहे हैं और या अल्लाह पाक अमल कुछ नहीं। या अल्लाह पाक इसका भी इदराक है, इसका भी एहसास है, अपनी रहमत से या अल्लाह पाक आप ही रहम वाला मामला फरमा के या अल्लाह पाक हमें अपने तक पहुंचा दे। हम अपनी कुव्वत पे इनसान नहीं करते, अपने अलूम पे इनसान नहीं करते, अपनी या अल्लाह पाक ताकतों पे इनसान नहीं करते, या अल्लाह पाक नेमत दी उस पे इनसान नहीं करते, सिर्फ तेरी तरफ मुतवज्जे हैं। अल्लाह पाक अपनी रहमत से या अल्लाह पाक हमें अपना कुर्ब नसीब फरमा, अपना इल्म नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक आज तक जिसको जो मिला तेरी तरफ से मिला, या अल्लाह पाक आज तक जिसको जो तेरी मार्फत मिली या अल्लाह तेरी रहमत से मिली, या अल्लाह पाक हम भी तेरी मखलूक हैं, हम भी तेरा नाम लेने वाले हैं। या अल्लाह पाक हम भी हिम्मत करते हैं, तेरे सामने हाथ खिलाते हैं कि या अल्लाह पाक वो मार्फत वो इल्म वो या अल्लाह तकवा वो अपनी मोहब्बत वो जो नेमते भी रूहानी बातनी जाहिरी हैं वो हमें नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही बार जिंदगी हमें मिली है, अगर हम खाली हाथ चले गए इन चीज़ों से, या अल्लाह पाक یا اللہ پاک پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا، یا اللہ پاک رونے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اللہ پاک پچھتاوے اور رونے سے بچا لے، یا اللہ پاک ساری نعمتیں نصیب فرما، دین کی ہوں یا دنیا کی ہوں، دنیا کے بھی حسنات نصیب فرما، آخرت کے بھی حسنات نصیب فرما، یا اللہ پاک جو لوگ غموں مشکلوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک جیسی بھی ہیں تو بہتر جاننے والا ہے، مال کی طرف سے ہے، اولاد کی طرف سے ہے، گھر بار کی طرف سے ہے، یا اللہ پاک جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھے جوڑ نصیب فرما، یا اللہ پاک جو رزق کی وجہ سے پریشان ان کو حلال طیب رزق نصیب فرما، یا اللہ پاک سب کو یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے ان کو راحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت اور ایمان کی موت مدینہ پاک کو نصیب فرما، اور یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کہ ہمیں اپنے لطف و کرم اور رحمت سے بلا استحقاق بلا عذاب جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما خصوصاً پاکستان کی، یا اللہ پاک اندرونی بیرونی فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں پریشان ہیں پس رہے ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو ان کے دلوں کو تسلی نصیب فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں ان کو دینے کے لیے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ پاک ہماری حالت تو یہ ہو گئی کہ یا اللہ پاک ہم نے تو ان کے لیے دعائیں مانگنی بھی چھوڑ دی، اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک انسانیت کا دکھ درد کی نصیب فرما، اور ان کو یا اللہ پاک ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکال دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
سب سے پہلے تو جی ماشاء اللہ جزاک اللہ، آج کا جو لیکچر تھا بہت ساری الجھنیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں تھی جی وہ کلیئر تھی، اور ساتھ ساتھ باتیں لکھ بھی رہتا تھا، لیکن ماشاء اللہ آپ ان کا جواب فوری بعد میں جو ہے وہ دے دیتے. ایک تو آپ کے پاس یہ ریکارڈڈ
جی جی ریکارڈنگ
یہ لیکچر دو چار دنوں سننے والا ہے، اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سننے والا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے